You're listening to the Quince podcast.
ये जो यूपी है ना, यहाँ पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब इसका और आने वाले चरण के मतदान के गणित का खूब गुणा भाग हो रहा है और आगे भी होगा। हम भी कई एक्सपर्ट्स के विचारों और उनके ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सत्ता में कौन बैठेगा ये तय होता है जमीन से, ग्राउंड से। तो लोगों के मन में क्या चल रहा है, टेलीविजन डिबेट से दूर यूपी में ग्राउंड पर क्या माहौल है, लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे द क्विंट के रिपोर्टर्स के साथ, जो इस समय ग्राउंड पर हैं, लोगों की नब्स को आंकने का काम कर रहे हैं और कई किस्से भी जमा कर रहे हैं।
लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स, यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना।
तो रिपोर्टर्स के पास जाने से पहले आपको बता दें कि यूपी में आज क्या बड़ा हुआ है। सबसे पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज में थे। उन्होंने कहा, गरीबों की सरकार जब होती है तो वो इसी प्रकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर काम करती है, लेकिन जब घोर परिवारवाद सरकार में रहते हैं तो वो अपने परिवार से बाहर सोच भी नहीं सकते। उधर गृह मंत्री अमित शाह बरेली में थे। वो बोले कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि अपराध कहाँ घटा है। अखिलेश जी, आप 2017 से पहले के जमाने में जी रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश आज अपराध मुक्त हो गया है। वही रामपुर में आज अखिलेश यादव थे। वे बोले कि आजम खान के बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वो झूठे मुकदमों में जेल में है, उनके ऊपर पेड़, भैंस, बकरी, किताब और शराब की बोतल चुराने का मुकदमा है, उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। जिनको सबने वीडियो में जीप से कुचलते देखा वो आज जेल से बाहर है। यही भाजपा का न्यू इंडिया है। बहरहाल, ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमने हमारे तीन रिपोर्टर्स को कनेक्ट किया है। मेरे साथ है फातिमा खान, शादाब मोइजी और मेघनाथ बोस। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू। थैंक्स प्रतीक।
थैंक यू।
मेघनाथ, सबसे पहले आपसे ही शुरू करेंगे। आप इस वक्त कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वहाँ क्या देख रहे हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है? जी,
अभी तो देखिए, मैंने फेज वन के लिए मथुरा, सहारनपुर, गाजियाबाद में गए थे एंड उसमें कुछ कुछ स्टोरी जैसे कि मथुरा में, जैसे देखिए कि ये जो हिंदुत्व ग्रुप्स कह रहे हैं कि अयोध्या तो झाकी है, मथुरा अब बाकी है, और डिमांड उठ रहे हैं। बीजेपी के भी कुछ नेता इस पे बयान दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बारे में एक कमेंट किया, काफी कंट्रोवर्शियल कमेंट रहा। तो इसके बारे में हम लोग मथुरा के वोटर्स से ये जानने गए थे कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, इलेक्शन पे उसका असर पड़ेगा कि नहीं। तो उस पे ये रहा कि देखिए, ये वेस्ट यूपी में खासकर कम्युनलिज्म तो का जो मुद्दा है वो काफी टाइम से रहा है, आज भी नहीं, वो 2014 के लोकसभा इलेक्शन भी कम्युनलिज्म के मुद्दे पे ही लड़ा गया था वेस्ट यूपी में। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बट बहुत सारे वोटर्स जो हमें मिले, हिंदू वोटर भी, मुसलमान वोटर भी, ये कह रहे हैं कि ये कम्युनलिज्म का मुद्दा उठा के ध्यान भटकाया जा रहा है इस बात से कि यूपी के और देश के इकोनॉमी एक डाउनवर्ड कर्व पे रहा है पिछले कुछ साल में। कोरोना महामारी के टाइम भी बहुत दिक्कतें आई है लोगों की, और सरकार से बहुत जन कह रहे हैं कि सुविधा और हेल्प सपोर्ट नहीं मिला है ज्यादा। बट पॉइंट ये है कि बहुत सारे वोटर बीजेपी के पक्ष में भी बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके हिसाब से बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ है। तो ये एक्चुअली सच है कि नहीं, ये तो आपके सामने आंकड़े है और शादाब और फातिमा भी बता पाएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर पे स्टोरीज भी किए हैं कुछ कुछ, बट ये है कि ग्राउंड पे सेंटिमेंट और बातें इस चीज पे हो रहा है।
ओके, तो शादाब, कुछ सुरक्षा के मुद्दों पर आपने बातचीत की है लोगों से और क्या जवाब आए उसमें?
जी प्रतीक, सुरक्षा की जहां तक बात है, देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो मेघनाथ ने जिस तरह बताया, कम्युनल तरह का जो एनवायरनमेंट है वो, और दूसरा है विमेन का जो सेफ्टी का इशू है वो। तो जब हम, क्योंकि हम ने मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, कैराना में गए, अमरोहा, मुरादाबाद इन साइड गए, तो वहां पर थोड़ी अलग अलग दो तरह की चीजें हैं। जब कैराना की बात करते हैं, क्योंकि कैराना बहुत हॉट सीट रहा है और बार बार पलायन की बातें होती रही हैं, तो वहां पर पलायन को जो मैं समझ पाया हूँ और जो लोगों से बात करने के से मुझे समझ में आया, वो ये है कि क्राइम था उत्तर प्रदेश में, जो कैराना में क्राइम था, शामली कैराना ऐसा जो इलाका है यहाँ पे क्राइम था, ठीक है। और लेकिन ये कम्युनल वाला एंगल नहीं था उसमें, क्योंकि जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनको जो क्रिमिनल थे वो परेशान, चाहे अक्रॉस द रिलीजन परेशान कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको परेशान कर रहे थे, तो लोग उनसे परेशान थे। अब ये लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो उनपे एक्शन लिया गया। तो एक ये चीज थी, लोगों का ये कहना है कि सुरक्षा तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से उनका जो है सेफ्टी सुरक्षा वो सब बढ़ा है। लेकिन रही बात विमेन की, तो पिछले कुछ सालों में लगातार जो पिछला 2017 का चुनाव भी बीजेपी ने लड़ा था, आपको याद होगा कि रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे लड़ा गया था और ये सब बातें की गई थी। लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा इनका आप वो जो असर नहीं देखते हैं उन बातों का सरकार बनने के बाद, क्योंकि हमारी बात जब हम महिलाओं करते हैं तो हमें मुलाकात की मेरठ में फीमेल लॉयर से, ठीक है। तो अब वो लॉयर हैं, उनको कानून की जानकारी है, सब कुछ है। जब वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही हैं, तो आप सोचिए कि किसी नॉर्मल जो लोग, जिनके जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो
बिल्कुल
अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं होगी कानून के बारे में और अपने हक के बारे में, वो कहाँ कितना सुरक्षित होंगे। तो वो एक इशू है। कई सारी लड़कियों से हमारी बात हुई है तो वो भी बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ्टी को लेकर बड़ा बार बार कहती है कि बहुत ज्यादा पुलिस से लेकर तमाम जो है सेफ्टी बहुत ज्यादा उनको वो ऐसी प्रोवाइड नहीं कराई गई। रही बात जो आपको बिजनेस क्लास है, वो अलग अलग इलाकों में, चाहे वो जितने भी छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ा सुरक्षा को लेकर ये है कि उनको जो परेशान करते हैं, जो क्रिमिनल्स हों या गुंडे हों जो परेशान करते हैं, उसमें कमी जरूर आई है बट खत्म नहीं हुआ है।
ओके फातिमा, आप भी यूपी के कई इलाकों में घूम रही हैं, तो और किन बड़े मुद्दों पर लोग बातचीत कर रहे हैं?
जी प्रतीक, हमने इस बार ये हमारा जो जिस तरह से हमने इलेक्शंस को अप्रोच किया, हमने कोशिश की कि जो रेलिवेंट थीम्स हैं उसको कवर करें और लोगों को बताने की कोशिश करें कि किस तरह से जो एक शिफ्ट आया है योगी सरकार के अंडर उत्तर प्रदेश में, उसके चलते हमने एक सीरीज ही स्टार्ट की। उसका नाम हमने रखा है एवरीडे कम्युनलिज्म इन यूपी। तो बेसिकली उस सीरीज में हमारा जो प्राइमरी अप्रोच है जो हम सामने लाना चाह रहे हैं वो यही है कि जो लार्ज स्केल दंगे हुए हैं वो कम हो गए हैं जरूर, और जो योगी आदित्यनाथ भी बार बार बोलते रहते हैं अपनी हर स्पीच में कि मेरे अंडर कोई रायट्स नहीं हुए हैं, पर वो इसलिए हुआ है क्योंकि रायटिंग का जो नेचर है, जो वेरी नेचर है रायटिंग का, वो एकदम चेंज हो गया है। क्योंकि अब जो आप कोई भी दंगा फसाद देखें उसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको ऑर्केस्ट्रेट करने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, और बहुत फिर उसकी बात बहुत दिन तक चलती रहती है, स्क्रूटनी जो होती है। लेकिन अब हमने देखा, हमने ये पाया कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां छोटे 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 हमेशा इवेंट्स चलते रहते हैं जो बहुत ही पेटी चीजों पे, बहुत ही छोटी चीजों पे दो लोगों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और वो कैसे एक इंटर कम्युनिटी क्लैश बन जाती है। जैसे हमने आगरा में हम गए, हमने देखा कि वहां पे एक इंटरफेथ कपल में जो औरत थी, जो लेडी थी, उन्होंने सुसाइड कमिट करी, और उसके बाद वो इशू इतना बड़ा बन गया कि वहां पे पूरी कॉलोनी में जो दुकानें थी, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थी, जिनका कुछ भी इस हादसे से लेना देना था ही नहीं दूर दूर तक, उनकी दुकानें रैनसैक हुई, उनकी दुकानों लूटी गई। और ये एक लेसन देने के लिए कि एक जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, कि किसी एक ने भी किसी आपकी कम्युनिटी में से किसी ने कुछ अगर नहीं किया गलत या किया वो तो छोड़ दीजिए, सस्पिशन भी हो गलत करने का तो हम आपकी पूरी कम्युनिटी को पनिश करेंगे, आपको लेसन सिखाएंगे। तो इससे आप पूरी एरिया में एक डर का, एक खौफ का जो माहौल है वो आप हमेशा पनपता रहेगा, जो है हमेशा जो ये कम्युनल टेंशन है वो बनी रहेगी बनी रहेगी। तो आपको कोई बड़ी चीज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमेशा छोटे 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 इवेंट से ये ऐसा कभी पीसफुल मोमेंट आ ही गए ही नहीं दो कम्युनिटीज के बीच में। तो हमने इस चीज को एक्सटेंसिवली कवर किया। दूसरी हमने एक स्टोरी की इसलिए भी कि जो हम इतने सारे वीडियोस देखते हैं कि दुकानदार हरास हो रहा है, यहाँ पे कोई लिंचिंग हो रही है, यहाँ पे कोई किसी का स्टॉल जाके तोड़ा जा रहा है, ये सारे जो हम देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता चलता है। तो हमने कोशिश की उन लोगों को जाके रिविजिट करें जिन लोगों के साथ ये हरासमेंट हुआ है और उनसे उनकी लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ा है। क्योंकि सबसे ज्यादा एक तरीका होता है किसी को टेरराइज करने का या किसी कम्युनिटी को टेरराइज करने का, एक बहुत इफेक्टिव तरीका है कि आप उनसे उनकी रोजी रोटी छीन लें। तो अल्टीमेटली हमारा ये सारी जो थीम्स है हमने कवर की है फर्स्ट फेज में।
ओके अच्छा, कई बार
प्रतीक
ऐसा
एक बात कहना चाहूंगा कि
हाँ हाँ बताइए।
ये आपके जो योगी आदित्यनाथ भी वापस बार बार दोहराते आए हैं स्पीचेस में कि राइटिंग के केसेस नहीं हुआ, जिस जिस स्टेटमेंट के बारे में फातिमा ने भी जिक्र किया, बट पॉइंट ये है कि हमारे जो फैक्ट चेकिंग टीम है क्विंट में, वेबकूफ,
जी
उन्होंने बहुत बढ़िया स्टोरी किया है कि राइटिंग के जो केसेस है आज भी यूपी कंट्री में थर्ड रैंक करता है, सेकेंड या थर्ड में रैंक करता है। 2018 में थर्ड रैंक किए थे, 2017 में सेकेंड रैंक किए थे। तो लगातार, जैसे अब मैं आपको बता दूं, 2019 साल में यूपी में 5,714 केसेस ऑफ राइटिंग दर्ज हुआ है, ये सरकार की आंकड़े बताते हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि जो कम्युनल इंसिडेंट्स है, ये सरकार ने ही, केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जवाब दिया था कि 2017 साल में जिनके 9 महीने योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसमें यूपी रैंक नंबर 1 इन कम्युनल इंसिडेंट्स, अप टू 195 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए थे। ये भी सरकार के ही आंकड़े हैं। तो योगी जी जब कहते हैं कि राइटिंग या वायलेंस के इंसिडेंट्स नहीं आते उत्तर प्रदेश में, इस चीज का स्ट्रेट रिपोर्टिंग करने के जगह पब्लिकेशंस एंड इंक्लूडिंग अस, आई थिंक क्विंट ने एक जो अच्छा चीज किया, ये हमेशा ये फैक्ट चेक कर रहे हैं, नेता फैक्ट चेक कर रहे हैं नेताओं के स्टेटमेंट्स में। तो ये स्टेटमेंट भी, ये फैक्ट चेक लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट बार बार स्पीचेस में आ रहा है, ये एक्चुअली सरकार के अपने डेटा ही उस चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं।
हाँ, ये बात तो अभी सहारनपुर में पीएम मोदी थे तब उन्होंने भी कहा था कि दंगा मुक्त राज्य के लिए आप वोट कीजिए। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग, आप तीनों से ये सवाल है कि क्या ऐसा भी होता है कि लोग समस्याएं तो खूब गिनाते हैं लेकिन फिर कहते भी यही है कि हम तो इसी सरकार को वोट देंगे, तो ऐसा आपने कुछ
हाँ
लोगों से बातचीत की है?
बिल्कुल, मतलब मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत जो मतलब लोगों, हम लोग पूछते रहते हैं कि यूपी में क्या हाल है, यूपी में क्या हाल है। तो एक चीज बहुत लोग, मतलब बाकी राज्यों के लोग पूछते हैं कि एक बात बताइए, यूपी में, खास करके गांव में, रूरल यूपी में इतने लोग कोविड से मारे गए, और इतना हम लोग देखा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज है, 10 टाइप के प्रॉब्लम आ रहे थे सेकेंड वेव के दौरान खास करके, तो क्या लोगों में गुस्सा नहीं है? तो हमने जब लोगों से ये बात पूछा तो लोग, बहुत लोग ये कह रहे थे कि हाँ, हमारे गांव में लोग के डेथ हुआ है, मतलब कोविड से, या कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, बुखार से डेथ हो गया है। बट कोविड के टाइम पे बुखार के बहुत जन बोले कि गांव में बहुत जन बुखार से मर गए, वो ज्यादातर कोविड ही थे, कोविड के ही केसेस थे। बट पॉइंट ये है कि जब सेकेंड वेव के दौरान और सेकेंड वेव के कुछ महीने बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज थे, तब उस वक्त बहुत ज्यादा वो मैसेज को पहुंचा नहीं पाए वोटर्स को कि सरकार की कहाँ कहाँ कमियां रह गई है कोविड हैंडलिंग और कोविड मैनेजमेंट में। और समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, वो पार्टीज अभी इलेक्शन के बस कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले ये बोलने लगे हैं कि कोविड के सेकेंड वेव पे मिसमैनेजमेंट हुआ है। बट जब ये हो रहा था तब ये बात गांव गांव तक नहीं पहुंचा था। तो इस चीज का असर हमें इलेक्शन में ऐसे दिख सकता है कि शायद जो वोटर्स नाराज थे कि अपने जाने पहचाने लोगों को खोने में, जिनका डेथ हो गया है, उस चीज से नाराज थे, एक नाराजगी था, बट वो नाराजगी क्या सरकार के खिलाफ है? शायद हम लोग ने जो देखा है, शायद यूपी में सिचुएशन ये है कि मे बी दे आर एंग्री बट नॉट एंग्री एट द गवर्नमेंट।
बिल्कुल हाँ, शादाब आप कह रहे थे।
जी, ये सर मेघनाथ बता रहे हैं कि वो जो लोग एंग्री हैं, बड़ा मतलब अजब सा सिचुएशन ये है कि हमने जो इंडस्ट्रीज, मैं बेसिकली, मेरा फोकस ये था कि मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, उसको मैं टच करूं, उसकी क्या हाल है, उनको देखूं। तो वहां जो मेरी बातें हुई वो बड़ा अजीब, मतलब अजब सा डिवाइड था कि वो बिजनेस जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट ठप हैं, चौपट हैं, वो खराब हो रहे हैं, हालात उनकी खराब है, इकोनॉमी उनका लॉस, मतलब वो फाइनेंशियली लॉस में है। ठीक है, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया हम वोट, अगर आप सोचते हैं कि हम ये इस लॉस को देखकर वोट करेंगे तो आप गलत सोचते हैं। मेरठ में मैंने वो आपको सीजर इंडस्ट्री ये कैंची वाली इंडस्ट्री है, मैं उसके ऊपर वोट कर मतलब उसके ऊपर जो मैं समझना चाह रहा था कि लोग वोटिंग पैटर्न क्या है इनका, ये इतने लॉस में है कह रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो आप ये सब चीजें वो जो है आप बता रहे हैं कि आपका बिजनेस लॉस में है, जीएसटी की वजह से लॉस में है आपका, ठीक है ये सारी चीजें आप लॉस बता रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप इन लॉस का जो है वो क्या इलेक्शन में आपका इसका कोई वो होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इन सब चीजों को देखकर मैं अखिलेश यादव को वोट कर दूंगा कि उनकी सरकार आ जाए, तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। तो ये बड़ा अलग सा था। और इसमें एक चीज और देखने को मिली कि जो बिजनेस क्लास में जो मतलब लेबर क्लास है, ठीक है, वो जो है वो आपको एंटी बीजेपी टाइप है, ठीक है, वो मतलब एंटी सरकार है उसको, चाहे कोई भी सरकार जब भी होती होगी तो हमेशा ये देखते हैं कि वो जो लेबर क्लास है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ बात करता है वो, ठीक है। इस बार अभी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो वो एक अलग सिचुएशन है। और जो बिजनेस का जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है, ठीक है, कंपनी का, वो जो है वो सरकार के साथ है। तो ये बड़ा अजब सा सीन था कि वो नहीं, हम तो वोट लॉस में है कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस स्थितियों के लिए, वो एक माइंड लोगों के दिमाग में एक बात बार बार डाली गई है, बार बार कही गई है कि आपका जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो देश का नाम मान बढ़ा है, लड़ वो रहे हैं, वो उनको पता है कि विधानसभा का चुनाव है, उसको इंटरनेशनल कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप बातें कर रहे हैं, आपके सामने एक छवि बनाई गई है, क्रिएट किया गया है कि आप कहें कि देश का जो नाम है वो बढ़ा है, तो हम तो इसी सरकार को वोट करेंगे, ठीक है, हम कितने भी लॉस में हो। हम मतलब कई ऐसे लोग मिले मुझे जो कह रहे हैं कि मतलब पूरा जो उनका 3 साल 4 साल का पीरियड है उसमें उनका बिजनेस चौपट हो चुका है, अब वो मतलब बहुत बुरी हालत में है। 20 से उनकी कंपनी में अगर 20-25 लोग थे तो आज की डेट में 7-8 लोग, ऐसे हालत थी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो वोट तो ये देख कर नहीं करते हैं। तो ये हमें देखने को मिला है कई जगह पर, दिखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, मैं बता रहा हूँ मेरठ, मैंने जहां जहां गया हूं मैं वहां वहां मैं पाया है चीजें कि ये छोटे स्केल पे भी लोग यही थी एंगल से, वही जो आप कहते हैं ना, वो अलग सोच से आप वोट कर रहे हैं, आपको बिजनेस से, आपको नौकरी चली गई है इससे बहुत ज्यादा फर्क जो है। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली वो एक कई एक क्लास है जो स्टूडेंट क्लास है, जिस नौकरी की तलाश में लोग हैं, यूथ हैं, वो नाराज, ऑब्वियस नाराज है वो नौकरी को लेकर, और बार बार जो नौकरी के लिए वो जॉब के लिए जो आपको वैकेंसीज निकलती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो पेपर लीक्स और घोटाला ये सब चीजें हुई हैं उसको लेकर एक नाराजगी है। बट ये जो बिजनेस क्लास है उसको लगता है कि नहीं, ठीक है, हमने सरकार के साथ, हमें
तो अभी फातिमा किसी अर्जेंसी की वजह से हमारे साथ आके चर्चा में नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आप दोनों से कि और क्या इस रिपोर्टिंग के दौरान आपने कुछ अलग ऐसा कुछ देखा हो या क्या कुछ कुछ शेयर करना चाहें?
देखिए दो चीज मैं जल्दी से आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक है कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले प्रयागराज में था, और प्रयागराज में हमने काफी स्टोरी किए, बट दो मेन मुद्दे थे। एक था कि प्रयागराज में जो एनटीपीसी के छात्रों को पीटा गया पुलिस द्वारा, वहां पे मैंने छात्रों से बात किया और ये बात सामने आई कि बहुत लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी के समर्थन रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और कुछ स्टूडेंट्स थे जो कह रहे हैं कि देखो मैंने बीजेपी को, एक स्टूडेंट खास करके ऐसे कहा कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया, 2019 में भी वोट किया, 2019 में जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को अटैक किया, उस चीज का भी समर्थन में था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये स्टूडेंट ने ऐसे कहा। पर फिर वो कहते हैं कि उस दिन 2 दिन पहले मुझे यूपी पुलिस आके मुझे पीटने लग गया मेरे हॉस्टल के अंदर। और फिर कहता है कि ये जो है, एक तो सरकार बेरोजगारी वाला मुद्दा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उल्टा हमें ही विलन बता रहा है उस चीज पे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मेरा जो ख्याल अब है वो बदल चुका है। और ये माइंड यू, दिस इज समबडी हु इज अ बीजेपी वोटर, हु हैज बीन अ बीजेपी सपोर्टर फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स।
आखिर में बस एक सवाल है दोनों से कि अभी तक आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको किस तरफ लोग जा रहे हैं? शादाब।
नहीं, ये कहना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये, और मैं ये करता भी नहीं हूँ कि इस तरह से मैं इलेक्शन को प्रिडिक्ट करूँ और सब मतलब लोगों के मन की बात, क्योंकि दो चीजें, इतने सारे इलेक्शन कवर करने का ये सीखा जरूर है कि जो वोटर्स आपके बहुत ज्यादा वोकल हैं वो एक अलग है, क्लास है, वो कुछ लोग हैं जो बहुत वोकल हैं, चाहे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो चाहे बीजेपी को सपोर्टर हो या समाजवादी के हो, किसी पार्टी के हो, तो वो पार्टी के हिसाब से बहुत वोकल वोटर बोलता है। दूसरा जो वोटर है वो आपको भापता है कि आप उससे क्या निकलवाना चाहते हैं, आप उससे क्या कहलवाना चाहते हैं। तो ये दो चीजें, इसलिए मैं इन चीजों से बचता हूँ। और रही बात फर्स्ट फेज की, क्योंकि लिए हमने वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन था और हमने ये सिर्फ चुनाव के समय ही कवर नहीं किया वेस्टर्न यूपी, तो और क्योंकि इससे पहले भी लगातार हम कवर करते आए हैं, तो जहां तक ये है कि वो किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर है वेस्टर्न यूपी में, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि लिए हमने इससे पहले हम लगातार ये देखते थे कि चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 हो, इन सब में हमने देखा है कि वेस्टर्न यूपी में जो जाट वोटर हैं, कहा जाता है वेस्टर्न यूपी को इस तरह से, मुस्लिम वोटर हैं, वो एक बढ़िया डिवाइड हो गया था इनके बीच में, बड़ा बड़ा बढ़िया सॉरी मतलब एक बड़ा डिवाइड हो गया था इनके बीच में। लेकिन अब जो है हम ये देख रहे हैं कि वो डिवाइड किसान आंदोलन की वजह से बहुत हद तक कम होता दिख रहा है। सिर्फ ये दिख रहा है या सच में ये वोट में कन्वर्ट हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल है समझ पाना, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर सच में डिवाइड है, बहुत नाराज है किसान, कह रहे हैं कि अरे नहीं, ना हम लोगों को 1 साल तक रोड पे बैठा रखा है इसने और अब माफी मांगा आपने, इसने मतलब सरकार ने चाल चली कि इलेक्शन से पहले हम लोगों को मनाने के लिए इन्होंने वापस लिया, वरना ये वापस भी नहीं लेते। एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि वो जो है बहुत सारे वोटर्स वो जो है वो जो कम्युनल एंगल है, और कम्युनल क्या उनका रिलीजियस एंगल कह लीजिए, जैसे कि वो मान के चलते हैं कि सरकार ने मतलब तो उनको दिमाग में ये फीड किया गया, बार बार ये बात हिट की गई कि मंदिर बनाया है हमारे धर्म के लिए कर रहा है, और तो रिलीजियस वो को सेंटिमेंट्स के साथ लोगों के वो सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, और वो एक फैक्टर है। किसान होने के बावजूद भी उन्हें ये लगता है कि नहीं किसान ठीक है ना, खेती किसानी तो होती रहेगी, बट हमारा जो धार्मिक आइडेंटिटी है वो हमारी बढ़ी है, मतलब हमारा वर्चस्व बढ़ा है। तो एक जो है ना वो मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो थोड़ा दिखा है कहीं कहीं पे, उसकी वजह से लोगों का, तो इसीलिए ये एकदम कहना क्लियर नहीं है कि कौन हाँ ऊपर है कौन नीचे। ऑब्वियसली इनके बावजूद भी समाजवादी और पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस फर्स्ट फेज के इलेक्शन में। 58 सीटों पर उनका उनकी पकड़ मजबूत दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि कांग्रेस भी इससे पहले भी जीतती आई है वहां पे कई सारी सीटों में, सहारनपुर से और कई जगहों पर कांग्रेस जीती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता जो है वहां से छोड़कर समाजवादी पार्टी आए, तो वो एक वो भी वोट जो है वो समाजवादी और आरएलडी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये चीजें मुझे जहां तक अभी समझ में आई है, बहुत क्लियरिटी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ अपर हैंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ऑब्वियसली गठबंधन की तरफ से अपर हैंड कह सकते हैं।
हाँ, ये बात तो है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मेघनाथ बाकी जो आने वाले जो फेज है जहां पर वोटिंग होने वाली, वहां पर बीजेपी मजबूत है या
देखिए,
नहीं?
मैं आपको ये बिफोर वी टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ यूपी, एक बात पश्चिमी यूपी के बारे में बता दे कि ये हमें बार बार याद रखना पड़ेगा कि 2017 में बीजेपी ने ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया था वेस्ट यूपी, और उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि बीजेपी के स्वीप के पीछे कि वेस्टर्न यूपी में बहुत कम्युनलाइजेशन हुआ है, और इस चीज आप देखिए पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार कौन से मुद्दों को सामने लाया है सबसे ज्यादा लोगों के सामने। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार ने सामने लाया है वो है लव जिहाद पे, जो कथित लव जिहाद जो कहते हैं, जो फैक्ट्स शायद वो अंडरग्राउंड बहुत ही अलग हो, बट एक जो नैरेटिव रखा है लव जिहाद का सामने, वो किनको टारगेट करता है, वो मुसलमानों को टारगेट करता है, उससे क्या हिंदू वोट एक तरीके से कंसोलिडेट होता है। तो फार्म लॉ का भी फैक्टर है, बट ये भी मानना पड़ेगा कि फार्म लॉज पे मोदी जी ने इलेक्शन के कई महीनों पहले फार्म लॉ का रिपील कर दिया, तो क्या 4 महीने बाद उसका फिर भी फार्मर नाराज रहेगा? क्या वो जाट फार्मर भी समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगा? चलिए अगर आरएलडी वाले सीट पे आरएलडी के लिए कर भी दिया, क्या बाकी सीट्स में जाट फार्मर एसपी के लिए वोट करेंगे? तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, और इसीलिए मैं भी शादाब की तरह कोई गेस हैजार्ड नहीं करना चाहूंगा कि ये जीत रहा है कि वो जीत रहा है। और रहा रही बात बाकी जगहों की, एक एक दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी हाथरस फेज 3 में वोट करने वाला है। हाथरस में जो कांड हुआ था बहुत ही अनफॉर्चुनेट शॉकिंग कांड था पिछले 2020 के, उसमें एक बात सामने आया है जब मैं कास्ट एनालिसिस कर रहा था वेस्ट यूपी के वोटर्स के, कि जो वाल्मीकि सबकास्ट है, दलितों में जो वाल्मीकि सबकास्ट है उसमें वो सबकास्ट ट्रेडिशनली बीजेपी के सपोर्टर रहा है, बट वाल्मीकि वोटर, कहीं सारे वाल्मीकि वोटर ने मुझे कहा कि हाथरस जो कांड हुआ था उसके वजह से उनका, और उसके बाद खास करके जो इवेंट इंसिडेंट के बाद योगी सरकार का रिएक्शन रहा है, प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उन्होंने कहा था कि ये रेप का केस है ही नहीं, और योगी जी ने भी उस केस पे ज्यादा कुछ कहे नहीं थे, तो ये सारी चीजों पे कुछ नाराजगी था। तो कास्ट वाइज भी जैसे जाटों में देख रहे हैं कि आरएलडी की तरह तरफ थोड़ा शिफ्ट, काफी शिफ्ट का बात हो रहा है, वाल्मीकियों में जो ट्रेडिशनली बीजेपी वोटिंग सबकास्ट रहा है उनमें बात हो रहा है कि बीजेपी छोड़ के चले जाए। तो ये जो बियॉन्ड कास्ट लाइन्स, मतलब ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल कास्ट वोटिंग पैटर्न का जो बात देख रहे हैं, इससे ही शायद इस यूपी इलेक्शन का बात पलट सकता है। और यही मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा कि ईस्ट यूपी में हम लोग, जैसे यूपी में वोटिंग वेस्ट से ईस्ट जाता है, हम लोग अभी ईस्टर्न ईस्ट की तरफ स्लोली बढ़ने लगेंगे, ईस्ट यूपी में जो सीनियर बीजेपी के लीडर थे, मंत्री भी थे, वो छोड़ के अभी ऑपोजिशन पार्टीज ज्वाइन किए हैं, जो खास करके ओबीसी नेता थे, वो भी यही कास्ट इक्वेशन का बीजेपी का बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो ओबीसी वोट जो है ईस्ट यूपी का किस तरफ जाएगा, क्या सपा उस चीज पे कैपिटलाइज कर पाएगा, क्या 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 फिर वो बीजेपी के साथ ही रहेगा, आई थिंक दैट इज द की क्वेश्चन गोइंग अहेड इनटू द लास्ट फ्यू फेजेस ऑफ द यूपी इलेक्शन।
ओके, चलिए, तो आप अपनी रिपोर्टिंग का जो सफर है वो जारी रखिए, हम आपसे आगे भी कई इनपुट्स लेते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
शुक्रिया प्रतीक।
शुक्रिया शुक्रिया प्रतीक।
तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।